हरे कृष्ण। तो आज हम दशम स्कंद के जो भगवान बाल लीला है उसके जो तत्व है उसके बारे में जो चर्चा हो रही है अष्टम अध्याय में उस पर थोड़ा विवरण करेंगे। तो पहले हम जो भागवतम के दशम स्कंद का और खास करके उसके तात्पर्य में जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ने जो विशेष योगदान प्रदान किया है रस तत्व का उसको थोड़ा पार्श्वभूमि के रूप में समझेंगे और फिर उसके बाद में जो अंदर महाराज ऋषिदमाई की महिमा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो श्रीमद् भागवतम है जैसे वेदांत सूत्र का था तो ब्रह्म जिज्ञासा ये पहला श्लोक है। तो इस एक श्लोक पे इस एक श्लोक का अगर हम श्री भाष्य पढ़ते हैं रामानुजाचार्य ने लिखा है तो उसका इस एक सूत्र का उन्होंने 100 पेज परपोट दिया है 100 जो पन्ने हैं उसका तात्पर्य है उसका। उसी तरह से जो श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है लंबा श्लोक जन्माद्य से तन्वय तत्पश तो उस एक श्लोक पे मधुसूदन सरस्वती ने पूरा किताब लिखा हुआ है। ऐसे भक्त सिद्धांत सिंह ठाकुर ने हम जानते हैं विस्तारित रूप से कई दिनों तक पहले श्लोक पर प्रवचन दिया था। तो जो जीव गोस्वामी है अपने शत संदर्भ में खास करके अपने परमात्मा संदर्भ में चतुश्रुति टीका में वे समझाते हैं कि ऐसे जो वैदिक शास्त्रों का समस्त ज्ञान है वह सब भागवतम के प्रथम श्लोक में है। वो बताते हैं कैसे जो सर्ग विसर्ग जो 10 विषय है भागवतम के वो सब संपूर्ण भागवत में पहले श्लोक में है। बताते हैं कैसे गायत्री है जो गायत्री वैदिक शास्त्रों उपनिषदों का अंत है कैसे अलग अलग वेदों उन्होंने अलग अलग विभाग है पहले श्लोक के कैसे अलग अलग वेदों से कौन सा श्लोक कौन से उपनिषद का संबोधन करता है उसका बहुत विस्तारित वर्णन किया है। पर उसके बाद में ये बताने के बाद पहले श्लोक में क्या बताया है कि मैं उस परम सत्य पर चिंतन करता हूं और फिर उसके बाद में जो श्लोक है महत्वपूर्ण है निगम कल्पतरोर गलितम फलम मुहुर अहो रसिका भूमि भाविका। तो वहां पर शब्द आता है रसिक उस शब्द को हमारे आचार्य बहुत महत्व देते हैं। यहाँ पे दो शब्द जोड़ रहे हैं वो निगम कल्पतरोर निगम कल्पतरो मतलब वृक्ष तो वो तुलना कर रहे हैं कि सारे वैदिक शास्त्र जो है वो एक कल्पतरु के समान कल्पतरु के समान क्यों बताया गया वैदिक शास्त्र को क्योंकि जो भी चाहिए हमें वैदिक शास्त्रों में जीत दिया है। भौतिक जगह अभी पाश्चात्य देश में जो वैदिक शास्त्रों में 3 ग्रंथ बहुत लोकप्रिय है पहला है पतंजलि का योग सूत्र दूसरा है भगवद्गीता और तीसरा है काम सूत्र। क्यों क्योंकि भौतिकवादी लोगों को क्या चाहिए इंद्र तृप्ति चाहिए तो योग सूत्र क्यों लोकप्रिय है वो आध्यात्म में रुचि नहीं है वो उनको अच्छी तबियत रखनी है और काम सूत्र में रुचि क्यों है क्योंकि भोग करना है। तो जो वैदिक शास्त्र है कल्पतरु है आपको जो चाहिए वो वहां पे मिल जाएगा पर जो कल्पतरु है उसका फल है जैसे पेड़ का जो सबसे अच्छा चीज क्या होता है पेड़ भी छाया देता है पेड़ भी हमें अगर हम अग्नि जला रहे हैं तो बाद में अपने शरीर से अग्नि देता अग्नि के लिए लकड़ी देता है पर सबसे महत्वपूर्ण सबसे स्वादिष्ट सबसे अच्छा पोषण करने वाला जो पेड़ का विभाग है वो है फल। तो ठीक उसी तरह से बता रहे हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम कि गलितम फलम सारे जो वैदिक शास्त्र है वो कल्प वृक्ष है और उनका पूरा पका हुआ फल है गलितम फलम और वो जो फल है वो कौन चख सकता है उसको वो ऐसा फल नहीं है कि हम उसको मुंह से चबा के खा सकते हैं। बोलते हैं कि मुहुर अहो रसिका भूय भाव कहा जो रसिक लोग हैं वही उसको चख सकते हैं। तो जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसमें जो वेदांत है वेदांत सूत्र उसको बहुत महत्व दिया गया था सब आचार्यों ने वेदांत पे तात्पर्य लिखे हुए पर जो वेदांत और रस का जो संगम है वो केवल गौड़ीय संप्रदाय ने किया है। तो ये रस क्या है हम भक्ति में आने के पहले शायद रस के बारे में सुना होगा आम रस या गन्ने का रस तो ये रस वास्तव में है क्या तो यह रस इसका अर्थ 3 स्तर पे होता है जब बोलते शांत रस दास्य रस साख्य रस ये क्या है संबंध तो रस का एक अर्थ होता है संबंध दूसरा अर्थ होता है कि संबंध में भावनाएं जैसे व्यभिचारी भाव फिर अनुभव, ये सब भक्त श्याम सुंदर में वर्णन किया है। तो संबंध में जो भावनाएं आते हैं उसको भी रस बोलते हैं। पर ये रस जो शब्द है इसकी पार्श्वभूमि क्या है कि भारत मुनि नाम के महान संत थे, उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। तो नाट्य शास्त्र में वर्णन आता है कि कैसे सब देवी देवता है एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसा साधन दीजिए जिससे एक साथ मनोरंजन भी होगा और शुद्धिकरण भी होगा। तो फिर तभी ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को नाट्य शास्त्र का ज्ञान दिया और भारत में इस धरताला पे इस पृथ्वी पे लाया है। तो हम बहुत बार बाहर जाते तो लोग नाटक देखते हैं, तो हम भी कभी कभी ड्रामा कर लेते, थोड़ा कॉस्ट्यूम पहन लेते, हाथ पैर हिला के नाटक कर लेते हैं। पर वास्तव में वैदिक शास्त्रों में हर एक चीज को बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही नियमबद्ध पद्धति से बताया गया है। तो नाटक भी है ये बहुत ही नियमबद्ध पद्धति से करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, भरत मुनि बताते हैं कि अगर उचित पद्धति से नाटक करते हैं, मतलब उन्होंने नियम दिया है कि किस प्रकार से वेशभूषा होनी चाहिए, किस प्रकार से हाथ के हाल चलने चाहिए, किस प्रकार से चेहरे का हाव भाव होना चाहिए, किस प्रकार से आवाज का ऊपर नीचे करना चाहिए, किस प्रकार के डायलॉग होने चाहिए, तो ये सब उचित पद्धति से अगर करते हैं तो फिर क्या होता है, उससे जो दर्शक है जो नाटक देखने आए वो रस की अनुभूति कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि नाटक का उद्देश्य क्या है, नाटक का उद्देश्य है कि जो उपस्थित दर्शक है उनके हृदय में, उनके मन में रस की उत्पत्ति की जाए। तो भरत मुनि जो है वह रस को आध्यात्म से नहीं जोड़ते हैं, वो बोलते हैं कि आप अलग अलग प्रकार के नाटक कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं शकुंतला नाम का विख्यात नाटक है, तो उसमें जो भारतीय संस्कृति में आता है तो उसमें भक्ति कोई प्रधान स्थान नहीं रहती है, कुछ पार्श्वों में धर्म चल रहा है, पर वो भौतिक एक भौतिक जीवन के बारे में वर्णन है, तो वो एक नाटक बन गया। तो यह बहुत समय से चली आ रही परंपरा है कि जो नाटक है वह मनमानी पद्धति से नहीं करना है, वो उचित पद्धति से करना है जिससे कि दर्शकों में रस उत्पन्न हो। तो भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि ने एक नाट्य पे वर्णन किया है, उसके अलावा एक आचार्य ने भी उस पर वर्णन किया हुआ है। हम उनको एग्जैक्टली आचार्य नहीं कह सकते, वो पंडित है पर बुद्धिमान थे और शास्त्रों में भी थोड़ा विश्वास था उनका। पर इन शास्त्र नाट्य शास्त्र ने शास्त्र पे ज्यादा वर्णन नहीं किया है, रस पे ज्यादा वर्णन किया है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि वे कहते हैं कि रस मतलब एक ऐसा भावना का अनुभव है जो नाटक के द्वारा उत्पन्न होता है। पर श्री रूप गोस्वामी पाद ने जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखा तो उन्होंने वर्णन किया, शब्द तो रस ही इस्तेमाल किया पर रस का जो अर्थ है, जो व्याख्या है उन्होंने बहुत अलग की। उन्होंने बताया कि जो रस है वह केवल एक नाटक में किसी स्टिम्यूलस, किसी परिस्थिति से उत्पन्न होने वाली भावना नहीं है, बोले कि जो रस है ये एक आध्यात्मिक भावना है और यह भगवान के संबंध में महसूस होती है। और इसीलिए जो रस उत्पन्न अनुभव करने के लिए कोई हमें नाटक में उपस्थित जरूरी नहीं है, क्योंकि भक्त का जो भगवान के साथ संबंध है वह शाश्वत है और शाश्वत संबंध होने के कारण रस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ ड्रामा, रस इज अ कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ लाइफ फॉर अ डिवोटी। ये नाटक की उत्पत्ति नहीं है, ये जीवन का सदैव सत्य है, तत्व है एक भक्त के लिए। तो जो रस की परिभाषा है इसका हम विस्तार में वर्णन चर्चा कर सकते हैं, पर संक्षिप्त में यह है कि रूप गोस्वामी ने बताया कि भक्त जो भगवान के साथ महसूस करता है वह भावना को रस कहते हैं। और फिर अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार के रस महसूस हो सकते हैं उसका वर्णन बड़े विस्तार से रूप गोस्वामी पाद ने किया। तो पहला जो उसका वर्णन है उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में किया, और फिर माधुर्य रस का जो विस्तारित वर्णन है उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि में किया है। और इसका जो विश्लेषण है, एनालिसिस है, वो जीव गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ में, खास करके कृष्ण संदर्भ में और प्रीति संदर्भ में बहुत विस्तार से किया है। और भक्तिनाथ ठाकुर ने भी हमारे अपने जो प्रेम प्रदीप जो ग्रंथ है, प्रेम प्रदीप और जय दयाल ने इस रस के बारे में बहुत चर्चा की है। जो रस का तत्व है यह और किसी संप्रदाय में नहीं है, जो चार प्रमाणिक संप्रदाय है प्रधान रूप से, तो हम देखते हैं कि इनमें जो चार संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, माधव संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो इसमें जो श्री संप्रदाय है उसमें प्रधान रूप से भक्ति जरूर है, महान भक्त है, शुद्ध भक्त है उस संप्रदाय में भी, पर वह जो भक्ति का अनुभव करते हैं वह भक्ति का अनुभव प्रधान रूप से ऐश्वर्य भाव में होता है। तो माधव संप्रदाय में भी ऐश्वर्य भाव में, माधव संप्रदाय में उल्टा ऐश्वर्य भाव ज्यादा है श्री संप्रदाय से भी। पर जो निम्बार्क संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय, इन दोनों में वे समझते हैं कि कृष्ण ये विष्णु के स्रोत है। तो साधारण कैसे ये तीन स्तर पे कार्य हो रहा है। क्या है कि अधिकांश लोग भारत में सोचते हैं कि कृष्ण ये विष्णु के अवतार है, और ये एक तरह से सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि विष्णु इज द इंटरमीडिएरी बिटवीन द मटेरियल एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में विष्णु होते हैं। तो इसीलिए जो भी किसी को प्रार्थना की जाती है कि हमें धर्म से ग्लानी हो रही है, कृपया होता रहिए, तो प्रार्थना विष्णु को होती है। और फिर विष्णु बोलते हैं कि मैं अभी प्रकट होऊंगा। तो कैसे है कि यहाँ पे विष्णु है जो बीच में, भौतिक जगत यहाँ पे है, आध्यात्मिक जगत यहाँ पे है। तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण जो है वो विष्णु के भी स्रोत है, पर जब भौतिक जगत से कोई प्रार्थना करता है तो वो विष्णु को प्रार्थना करता है। तो जब विष्णु को प्रार्थना होती है तो अलग अलग अवतार जो है वो प्रकट होते हैं, इच्छा जो भगवान की इच्छा है के अनुसार। तो इसीलिए अब जब इस कलयुग के अंत के समय या पिछले इस कलयुग के शुरुआत के समय या पिछले द्वापर युग के अंत के समय जब प्रार्थना हुई तब विष्णु को ही प्रार्थना हुई। हम देखते हैं भागवत के दशम अध्याय, दशम स्कंध के पहले अध्याय में, अब विष्णु ने कहा कि मैं अवतार लेने वाला हूं अभी, पर वास्तव में वो कौन आए थे? वो कृष्ण आए थे। तो इस भौतिक जगत के जो कृष्ण है वो विष्णु से आ रहे हैं। इसीलिए अगर कोई कहता है कि विष्णु कृष्ण विष्णु से आते हैं, वो सत्य है, पर वो पूर्ण सत्य नहीं है। इट इज ट्रू बट इट इज नॉट द कंप्लीट ट्रू। तो पूर्ण सत्य क्या है कि भौतिक जगत में कृष्ण विष्णु से आते हैं, पर आध्यात्मिक जगत में विष्णु कृष्ण से आते हैं। तो जो ये सत्य है कि कृष्ण विष्णु के स्रोत है, ये निम्बार्काचार्य और जो विष्णु स्वामी है वल्लभाचार्य दोनों स्वीकार करते हैं। और वे भी समझते हैं कि जो वृंदावन की भगवान की लीला है वह सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ लीला है। और वह भी वृंदावन में जो भगवान का श्याम रूप है उसकी आराधना करते हैं। पर फिर भी इन संप्रदायों में भी रस का तत्व है वह नहीं बताया था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संप्रदाय में भक्ति का अनुभव नहीं होता है, भक्ति का अनुभव होता है, पर जो रस के का संदर्भ लेके भक्ति का विश्लेषण है वह नहीं किया गया है। तो जो जीव गोस्वामी है वह प्रतिसंदर्भ में समझाते हैं कि जो रस है वह केवल एक भौतिक अनुभव नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल भारत में, आजकल ही सनातन काल से चल रहा है कि भारत में रामायण, महाभारत, भागवत इसका पाठ जो है बहुत प्रिय है लोग, तो लोग सुनने आते हैं, वो अच्छा है। पर अगर जो वक्ता है वह वास्तव में भक्ति का रस अनुभव नहीं कर रहा है, तो फिर वो जो श्रोता है उनको भक्ति का रस अनुभव नहीं करा सकता है। तो जरूर उसमें कोई आनंद होगा, पर वो आनंद क्या है? वो सात्विक आनंद है, वो आध्यात्मिक आनंद नहीं है। सात्विक आनंद मतलब भौतिक जगत के स्तर में ही आता है, आध्यात्मिक आनंद वो दिव्य स्तर पे होता है। तो इसीलिए मुहूर अहो रसिका विभाव कहा, दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, रस रसिका और भाव कहा, कि अगर आप रसिक बन जाओगे तो आप भाव का भाव अनुभव कर पाओगे। तो इस श्लोक का जीव गोस्वामी पाद बहुत विस्तारित रूप से परमात्मा संदर्भ के संदर्भ में विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि कैसे सारे वैदिक शास्त्रों का फल है कि हम रस अनुभव करें, और वह रस अनुभव करने की जो झलक है वह हमें दशम स्कंध में मिलती है। तो जो नंद महाराज यशोदा माई है ये परम भक्त है, और वह जो रस अनुभव कर रहे हैं वह सर्वश्रेष्ठ रस है। वास्तव में जो भक्ति है, भक्ति क्या है वास्तव में, इसका इसकी चर्चा जो है बहुत विस्तारित रूप से शास्त्रों में हुई है। तो जो पाश्चात्य देशों में जो धर्म है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, उनमें भगवान का कोई वर्णन नहीं है। और अगर आप पूछेंगे आपको भगवान कौन है, भगवान का वर्णन नहीं है, तो वो जवाब देते हैं कि वास्तव में हम सब सीमित है, और भगवान असीमित है, इसीलिए जो सीमित है वो असीमित को समझ नहीं सकता है, इसलिए भगवान का ज्ञान संभव नहीं है। तो यह एक तरह से सत्य है ये तर्क, ये लॉजिक, पर यह जो सीमित जीव है वो असीमित भगवान को नहीं समझ सकता है। पर अगर भगवान सही में असीमित है तो वे जरूर, तो इतने शक्तिशाली वो है कि वो सीमित जीव को भी स्वयं को समझने की शक्ति दे सकते हैं। तो हम हमारी शक्ति से नहीं समझ सकते भगवान को, भगवान की शक्ति से हम जरूर उनको समझ सकते हैं। तो जो भगवान का ज्ञान है इसका जो, जो, तो ये जो तर्क करते हैं क्रिश्चियन लोग, उसकी चर्चा भागवतम के दशम स्कंद के जो 87th चैप्टर जो है, जो श्रुति स्तव जो है, उसमें चर्चा होती है। तो वहां पर परीक्षित महाराज सवाल पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हमारे जो मन और इंद्रिया है ये तो भौतिक है और भगवान आध्यात्मिक है, तो हम भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक भगवान को कैसे समझ सकते हैं? अतः सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर जवाब देते हैं कि तुमने जो सवाल पूछा था वही सवाल का बहुत साल पहले नारद मुनि ने जो नर नारायण ऋषि से पूछा था। और फिर वो बोलते हैं कि नारायण नारायण ऋषि जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमने जो जब भगवान महाविष्णु सो रहे थे तभी उनको उठाने के लिए जो श्रुतियां है, श्रुतियां उनका गुणगान करने लगे, जैसे राजा होते हैं, राजा को उठाने के लिए अलार्म क्लॉक नहीं होता है, नहीं राजा उठेगा तो शांत से उठेगा, तो उठेगा कैसे उसको, तो उसके जो गुणगान करते हुए गीत गाए जाते उसको, और फिर वो गीत खुद की महिमा सुनते सुनते उठता है वो। तो वैसे ही भगवान है, महाविष्णु जब सो रहे होते थे उनको उठाने के लिए श्रुतियां गीत गाने लगे उनकी महिमा, तो उस गीत में उन्होंने वर्णन किया कि इस सवाल का उत्तर क्या है। तो विश्वनाथ ठाकुर अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि जब जीव आत्मा को सुनता है कि भगवान एक श्याम वर्ण के 16 साल के युवक है, तो फिर वो क्या सोचता है, वो सोचता है उसने श्याम वर्ण का श्याम वर्ण का बादल देखा है, उसने 16 साल का युवक देखा है, तो फिर वो 16 साल का युवक और श्याम वर्ण का बादल इन दोनों का अपने मन में एकत्रीकरण कर देता है, सोचता है कि हाँ भगवान ऐसे है। तो बोलते हैं कि दो मानसिक संकल्पनाओं के संगम से भगवान की उत्पत्ति नहीं होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेंटल कंसेप्शन इज नॉट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो फिर भगवान के बारे में हम विचार कैसे कर सकते हैं? वे भी स्वीकार करते हैं चक्रवर्ती पाल कि हम जो बद्ध जीवात्मा है अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान के बारे में विचार नहीं कर सकता है, पर फिर क्या कर सकता है? वो कहते हैं कि अगर जीव भगवान के बारे में भगवान की आदेश के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार विचार करने का प्रयास करता है, शास्त्र में बताया है कि भगवान इस वर्ण के है, उनके ये कद है, ये ऐसे दिखते हैं, तो उसके अनुसार जब जीवात्मा विचार करने का प्रयास करता है तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब उससे भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान अपनी जो चित्त शक्ति है, शुद्ध सत्व की शक्ति है, वह उस जीवात्मा के हृदय में प्रदान करते हैं, और शुद्ध सत्व की शक्ति जब जीवात्मा के हृदय में संचारित होती है तब वह भगवान को समझ सकता है, तब वह भगवान के बारे में विचार कर सकता है। समझना बात दूर है, इससे पहले विचार करना भी संभव नहीं है, भगवान के व्यक्तिगत जो गुण है, नाम रूप गुण लीला, उसके बारे में चिंतन कब संभव है? जब शुद्ध सत्व की शक्ति उसके हृदय में प्रकट होती है, और फिर इस तरह से जब भगवान का चिंतन करता है तो फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब प्रसन्न कैसे होते हैं? वे उनकी लादिनी शक्ति का संचार होता है, लादिनी शक्ति यानी राधा रानी। चैतन्य चरितामृत सुंदर श्लोक है, तो आप कृपया मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। लादिनी कराए कृष्ण, कृपया दोहराइए, लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन आस्वादन, लादिनी द्वारा कृष्ण करे, लादिनी द्वारा कृष्ण करे भक्तेर पोषण पोषण। तो यहाँ पे कृष्णास्कर जो स्वामी बताते हैं कि लादिनी शक्ति दो कार्य करती है, लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, तो लादिनी शक्ति जो है भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। अगर अभी हम कुछ प्रवचन देते हैं, हम कीर्तन करते हैं, तो हम हमारे भक्ति के कार्य से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, तो हम इतने तुच्छ है और हमारे हृदय इतना अशुद्ध है, हम क्या भगवान को प्रसन्न करेंगे? पर भगवान को कौन प्रसन्न कर सकता है? सिर्फ नारी शक्ति प्रसन्न कर सकती है। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, तो लादिनी शक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है और फिर लादिनी शक्ति वो भगवान को प्रसन्न करती है। जैसे हम अगर प्रसाद अगर भोग भगवान को अर्पण करते हैं तो क्या करते हैं? हम हमारे गुरु महाराज को प्रार्थना करते हैं। तो कैसे होता है वो? जो प्रार्थनाएं हैं, जो तीन चीजें होती है, प्रार्थनाएं जो ऊपर जाती है, प्रार्थनाएं ऊपर जाती है, फिर उससे क्या होता है? उससे जो लादिनी शक्ति है वह नीचे जाती है। लादिनी शक्ति जब आती है नीचे, तो उससे हमारी सेवा भगवान तक पहुंचती है, और जब हमारी सेवा भगवान तक पहुंचती है तो फिर भगवान के आशीर्वाद हम तक आते हैं। तो चार स्तर होते हैं इसमें। सो फर्स्ट आवर प्रेयर्स, आवर सिंसियर प्रेयर्स गो अप, देन द लॉर्ड्स पोटेंसी डिसेंड्स, देन आवर अटेम्प्ट्स प्लीज कृष्णा, एंड देन द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड कम अपॉन अस। तो जो राजी शक्ति पहले क्या करती है? तो भगवान को प्रसन्न करती है, और जब भगवान को प्रसन्न किया जाता है तो फिर क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता में यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाते, संतुष्ट होते हैं। तो लादिनी कर रहा है कृष्ण भक्तेर पोषण, कि दूसरा कार्य लादिनी शक्ति क्या करती है? वो भक्त का पोषण करती है। तो यह सब जो हो रहा है वो लादिनी शक्ति के माध्यम से हो रहा है। तो जो लादिनी शक्ति का जो तत्व है वह भी दूसरे कोई संप्रदायों में बताया नहीं गया है। कि अगर हम देखते हैं भक्ति की परिभाषा, जो रामानुचार्य बताते हैं कि वो बोलते हैं कि सदा ध्रुवानुस्मृति, कि जो भगवान का सदैव स्मरण है वह वास्तव में भक्ति है। माधवाचार्य बताते हैं कि जो भक्ति क्या है, वो बताते हैं कि वास्तव में अगर कोई भगवान के ज्ञान के बारे में चिंतन करते हुए उनके बारे में प्रेम से विचार करता है तो वह भक्ति है। तो निम्बार्काचार्य वल्लभाचार्य भी, थोड़े थोड़े सूक्ष्म फर्क है, पर भक्ति की परिभाषा क्या है? ज्ञान होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए और स्मरण होना चाहिए। तीन चीजें बताते हैं अलग अलग लोग। पर हम वैष्णव शक्ति ठाकुर बताते हैं जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के आधार पर कि भले ही ये तीनों हो, प्रीति हो, ज्ञान हो, स्मरण हो, इससे भक्ति नहीं उत्पन्न होती है। भक्ति ये भगवान की शक्ति है। तो हम ज्ञान, प्रीति और स्मरण, इन तीनों से क्या करते हैं? हम इन तीनों के द्वारा निवेदन करते हैं भगवान को, हे प्रभु आप कृपया आपकी लादिनी शक्ति प्रदान करो। तो हम भी जप करते हैं तो कभी कभी प्रयास दान लगा के जप करने का, पर कभी कभी जप जप में रुचि आती है, कभी कभी रुचि नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारे स्मरण से, हमारे ज्ञान से, हमारे प्रीति से भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। तो भगवान हमें परीक्षा ले रहे हैं, हम ज्ञान, प्रीति और जो स्मरण है तीनों को पूरी तरह से करना चाहिए हमें, पर इससे क्या होता है? ये जो भिखारी भीख मांगने के समान है। जो भिखारी भीख मांगता है तो फिर जो वैष्णव है, वैष्णव आचार्य है, वो बड़े बुद्धिमान भिखारी है, भिखारी है पर बुद्धिमान भिखारी है। अथा गोकुलानंद भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, कौर चंद्र भगवान की जय। मान लीजिए हम कोई गाड़ी में जा रहे हैं और रास्ते में कोई भिखारी आता है और फिर जो सिग्नल है वहां पर ठक ठक करता है, क्या चाहिए? ये कार दे दो मुझे। तो बोले हिम्मत कैसे हुई कार मांगने की? कुछ एक रुपया दो रुपया चाहिए ले लो, कार कैसे मांग सकते हो? तो कोई इस तरह से भीख मांगेगा तो बोले जरूरत कैसे हुई ऐसे भीख मांगने की? तो ये भौतिकवादी लोग क्या होते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान को बोलते हैं कोई संपत्ति दे दो, हमको कोई पुत्र दे दो, हमको कोई समस्या है समस्या सुलझा दो। तो ये सब छोटी छोटी भीख मांगने के समान है। तो जब वैष्णव आते हैं बोलते हैं भगवान आप मुझे भक्ति दे दो, प्रेम दे दो। तो प्रेम क्या है? प्रेम ये भगवान को जीत लेता है। तो ये भगवान के लिए इतना अंतरंग है, मुक्तिं ददाति कहिचित् न स्म भक्ति योगम। वाचस्पति स्वामी बताते हैं कि भगवान मुक्ति भी आसानी से देंगे पर भक्ति नहीं देंगे, क्योंकि भक्ति दे देंगे तो उनका हृदय दे रहे हैं वो, तो इसलिए बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं। तो हम नहीं मांग सकते हैं, हम वास्तव में प्रयत्न करते हैं स्मरण, ज्ञान और प्रीति का। तो उससे क्या होता है? उससे राधा रानी प्रसन्न होती है। जो लादिनी शक्ति है वह राधा रानी ही है, प्रसन्न होती है। फिर वह जो है हमारे हृदय में संचारण करती है, जब हमारे हृदय में संचारण करती है उससे फिर भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर भगवान अपने भक्ति का आस्वादन कराते हैं हमको। तो इसीलिए जप में भले ही हमें रुचि ना आए, हमें जप करते रहना चाहिए। हम जानते हैं कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सेसिव चैंट, हम जो है आनंद जप के द्वारा उत्पन्न नहीं कर सकते, पर हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं हमारी प्रयास के द्वारा, और फिर भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो वो हमें आनंद दे देंगे। और वास्तव में अगर हमको रस नहीं मिल रहा है जप में, तो फिर वह भगवान को प्रसन्न करने का और बड़ा मौका है, क्योंकि अगर हमें स्वाद मिल रहा है जप करने में, तो हम जप खुद की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। भगवान का संदर्भ कहाँ है वहां पे? पर जब हमको स्वाद नहीं मिल रहा है जप में, तभी भी हम ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जप कर रहे हैं। भले ही मुझे स्वाद मिले या ना मिले, प्रभु मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। और यह जब भाव रखते हैं, तो उससे वास्तव में निस्वार्थ भाव से जब हम जप करते हैं, तो निस्वार्थ भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर वे भक्ति में हमें जो हरिनाम में रस जो है प्रदान करते हैं। तो ये जो रस तत्व है कि जो लादिनी रस, जो परम रस क्या है, वास्तव में साक्षात राधा रानी है, और वह हमें प्रदान करती है। तो आचार्य यहां तक बताते हैं कि हमारी भक्ति नहीं, आध्यात्मिक जगत में सब पार्षद है भगवान की, उनकी भी भक्ति राधा रानी से ही आ रही है। तो यशोदा माई की जो भक्ति है वह भी राधा रानी से आ रही है। नंद महाराज की भक्ति है वह भी राधा रानी से आ रही है। जितने भी जीवात्मा है उन सबकी जो भक्ति है लालिनी शक्ति से आती है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो लादिनी शक्ति है भगवान की, वह बहुत अधिक रूप से यशोदा माई और नंद महाराज को प्रदान है, यशोदेव और जो देवकी है उनकी तुलना में। तो जीव गोस्वामी जो है गोपाल संपर्क वर्णन करते हैं नंद महाराज की महिमा को, कहते हैं कि नंद और यशोदा, इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? वह कहते हैं यशोदा का अर्थ है यशदा, जो यश प्रदान करती है उनको यशोदा कहते हैं, और नंद मतलब आनंद द, जो आनंद प्रदान करते हैं उनको नंद कहते हैं। तो यशोदा माता का ये वो तो शाश्वत भगवान के अंतरंग पार्षद है आध्यात्मिक जगत में, पर बहुत ही उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता इतने प्रसन्न हुए कि यह जो कन्या है जिसके भी घर में जाएगी वो यश प्रदान करेगी, इसलिए उनको नाम दिया यशोदा। और ये नंद महाराज ये पांच भाई के साथ में, उपनंद सुनंद नंद अभिनंद एंड नंदन, ये पांच भाई थे। और ये पांच भाइयों में सबसे बड़े थे उपनंद, तो इसीलिए जो इन सब पांच भाइयों के पिता थे उपजन्य महाराज। तो जो सूरसेन थे, सूरसेन ये नंद महाराज और वसुदेव दोनों के दादा हैं। तो सूरसेन की दो पत्नियां थी, एक पत्नी जो थी उनकी क्षत्रिय थी और एक पत्नी जो थी वैश्य थी। तो उनकी क्षत्रिय पत्नी जो थी उससे जो संतान उत्पन्न हुआ वह थे वसुदेव, और उनकी जो सूरसेन वह क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न हुए थे, और जो उनके वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए वह थे पर्जन्य। तो इसीलिए वो दोनों कजिन्स है, कजिन्स को हिंदी में बोलते छुलते भाई ओके आप समझते हैं। तो जो पर्जन्य महाराज थे जब वो वृद्ध हो गए, यद्यपि जो वैश्य है उनको वानप्रस्थ लेने की जरूरत नहीं है, पर जो वंशवृत्त में बताया गया है कि जो ब्राह्मण है वो संन्यास तक ले सकते हैं, क्षत्रिय है वो वानप्रस्थ तक ले सकते हैं। इसलिए पांडव जब उन्होंने अपना राज्य त्यागा तो उन्होंने भगवे वस्त्र नहीं पहने, उन्होंने सफेद वस्त्र पहने, उसे क्षत्रिय संन्यास नहीं लेते साधारण टाइम, और त्याग करते हैं घर का पर वो संन्यास नहीं लेते, वानप्रस्थ लेते हैं। तो वैश्यों को वानप्रस्थ लेने की जरूरत नहीं है, पर पर्जन्य महाराज स्वतः भगवान की भक्ति में एकाग्र होने के लिए वानप्रस्थ ले गया। और फिर उन्होंने उनका सबसे बड़ा पुत्र जो था उपनंद उनसे कहा कि आप उनका राज्याभिषेक करने के लिए योजना की। तो फिर सारे मथुरा वृंदावन वहां से बड़ा उत्सव हुआ था, सब जब वहां पे आ गए थे और फिर पर्जन्य महाराज ने राज्याभिषेक में उपनंद को अपना मुकुट पहना दिया और अपना हाथ जोड़ के उपनंद ने स्वीकार किया। और जब उनका अभिषेक होने वाला था तब बोले रुको, और उन्होंने जो मुकुट था उठाया और वो जाके नंद महाराज के सिर में रख दिया। तो नंद महाराज बड़े भयभीत हो गए और वो सब लोगों के मुड़ के उपनंद बोले कि क्योंकि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ इसीलिए मेरे पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते थे, तो मैं उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहता इसीलिए मैं स्वीकार करता हूँ। पर जो वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण गलत बताते हैं, बोलते हैं कि जो कोई नेता होता है वह कैसे नेता बन सकता है, वह प्रेरणा से बन सकता है, जोर से शक्ति से कोई नेता नहीं बन सकता है। अगर कोई नेता है वह जोर जबरदस्त है, मैं राजा हूं तो मेरी प्रजा हो, मेरे आदेश का पालन करो, जोर जबरदस्ती से करेगा तो ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। जो नेता असली नेतृत्व है वो प्रेरणा से होता है, और प्रेरणा कैसे आती है, प्रेरणा सदाचार से आती है। कोई बहुत प्रेम से परिपक्वता से बुद्धिमत्ता से जब बर्ताव करता है तो उसके प्रति हमारी प्रेरणा हो जाती है। और फिर बोलते हैं अच्छा बर्ताव कैसे आता है, वो बोलते हैं सद्गुणों से आता है। तो चार चीजें बोल रहे हैं वो, नेतृत्व कैसे होता है, प्रेरणा से होता है, प्रेरणा कैसे आती है, सदाचार से आती है, सदाचार कैसे आता है, सद्गुणों से आता है। और बोलते हैं कि नंद महाराज जो है, नंद जो है छोटे भाई थे उनको नंद महाराज नहीं कहते, नंद कहते हैं, नंद जो है उनके ऐसे गुण है कि वो मेरे छोटे भाई बन, मेरे छोटे भाई वाले हैं, वो मेरे अधीन होकर राज्य कर मंत्री बनने के योग्य नहीं है, वो मेरे का सारे ब्रह्मांड के राजा बनने के योग्य है, इसीलिए मेरा निवेदन है कि वे राजा बने, वह हमारा उचित नेतृत्व कर सकते हैं। और जब उपनंद ने ऐसा बोला तो सब ने गुणगान किया, उनका गुणगान किया, नंद महाराज का गुणगान, सब प्रसन्न हो गए। और फिर नंद महाराज ने भले ही वो बीच वाले भाई थे उन्होंने स्वीकार किया वो। तो जीव गोस्वामी तभी नंद महाराज की महिमा तुलना करते हुए वो सोचते हैं कि हम कैसे तुलना करें उनकी, तो बोलते ये पांच भाई है तो एक और पांच भाइयों की बहुत महान श्रृंखला है, वो कौन है, पांच पांडव है। और पांच पांडवों में सबसे प्रधान कौन थे, एक तरह से देखा जाए तो सबसे शूरवीर जो थे अर्जुन थे, बीच वाले थे बराबर। तो जो जब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर में या इंद्रप्रस्थ में भगवान पांडव से मिलने जाते थे तो वे भीम और युधिष्ठिर को प्रणाम करते थे, नकुल सहदेव उनको प्रणाम करते थे, पर अर्जुन को वो दोनों आलिंगन करते थे, तो अर्जुन बीच वाले थे। तो हो लेकिन जिस तरह से अर्जुन बीच वाले भाई थे पर सबसे अधिक निपुण थे, ठीक उसी तरह से बोले नंद महाराज जो है बीच वाले हैं पर सबसे अधिक निपुण है। फिर गोपाल फिर जीव गोस्वामी बोलते हैं कि वास्तव में ये तुलना उचित नहीं, क्योंकि भले ही अर्जुन सबसे निपुण थे पर कुछ ऐसी चीजें थे जिसमें बाकी भाई अर्जुन से ज्यादा निपुण थे, जैसे जो धर्म के ज्ञान में युधिष्ठिर महाराज अधिक निपुण थे, जो शक्ति थी, शक्ति क्रोध और शक्ति जो थी वो उसमें भी ज्यादा निपुण थे। तो वैसे बोलते हैं नंद महाराज ऐसे थे कि सब गुणों में सब भाइयों से अधिक गुणवान थे। और बोलते हैं कि कोई व्यक्ति के जो गुण होते हैं अगर दिव्य गुण होते हैं तो फिर क्या प्रभाव होता है कि दिव्य गुण जब किसी में होते हैं तो उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, अगर भौतिक गुण होते हैं तो उससे ईर्ष्या उत्पन्न होती है। अगर हम भौतिक चेतना में होते हैं तो कोई ये देखते हैं कि ये मुझसे अच्छा गाता है, मुझसे अच्छा प्रवचन देता है, मुझसे अच्छा मैनेजमेंट करता है, तो हमें ईर्ष्या होती है। पर अगर वो व्यक्ति सही में आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील है और हम भी आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का जो गुण देखकर हमें आकर्षण होता है, ईर्ष्या नहीं होती है। तो बताते हैं कि नंद महाराज सबको आकर्षित करते थे अपने सद्गुणों से, और इतना ही नहीं क्योंकि वो इतने विनम्र थे अपने बर्ताव में तो उनके बाकी भाई या कोई भी उनसे ईर्ष्या नहीं करते, उनसे प्रेम करते। फिर नंद महाराज ने राज्य स्वीकार किया, जब राज्य स्वीकार किया उन्होंने तो उपनंद जो थे उनके बड़े भाई थे, तो जब भी उपनंद कोई सुझाव देते थे तो नंद महाराज भले ही राजा थे वो उनका सुझाव जो है अपने माथे पर रखकर स्वीकार करते थे। तो उसके बारे में गोपाल चंद में तुलना करते हैं वे कि जिस तरह से भीष्म पितामह बड़े भाई थे, जो तीन भाई थे चित्रवीर्य, चित्रंगद और भीष्म, तो इनमें भीष्म पितामह बड़े थे, पर जो चित्रंगद और चित्रवीर्य जब भी राज्य करते थे तो हमेशा भीष्म पितामह जो भी बोलते थे उसी को तुरंत स्वीकार करके राज्य करते थे। ठीक उसी तरह से अगर नंदा उपनंद कुछ भी सुझाव देते थे तो नंदा महाराज तुरंत स्वीकार करते थे। तो इसीलिए अभी दो अध्याय बाद जब यमल अर्जुन वृक्षों का भंजन हो जाएगा तो उसके बाद में उपनंद सुझाव देंगे। वो कहेंगे कि ये जो गोकुल है बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है, हमें यहाँ से दूर जाना चाहिए, हमें वृंदावन जाना चाहिए। और वास्तव में तभी सब बाकी ब्रजवासी विस्तृत हो जाते हैं, क्योंकि वहीं पर उनके घर होते हैं, वहां पर उनकी गैया होती है, कोई भी जगह को परिवर्तित करना है आसान नहीं है। मान लिया अभी हम मंदिर में यहाँ पर रह रहे, बोले चलो मंदिर शिफ्ट कर दो, कहीं और चले जाते, कैसे जाने की जरूरी है, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, तो सब जो ब्रजवासी है थोड़ा विस्तृत हो जाते। उपनंद महाराज बोलते हैं कि अगर उपनंद की ये इच्छा है तो तुरंत हम स्वीकार करेंगे। और उपनंद से कहते हैं मेरा ये गोकुल से बहुत प्रेम है, क्योंकि मेरा कान्हा जो था जो बाल अवस्था में शिशु अवस्था में था वो इस गोकुल में रहा है, तो क्योंकि आपकी इच्छा है तो हम जरूर स्वीकार करते हैं। तो ये वास्तव में वैष्णव आदान प्रदान है। नंद महाराज जो है वो क्या कह रहे हैं, वो भले ही राजा है, वह उपनंद राजा नहीं है, क्योंकि वो भ्राता है, उनके बड़े भाई है, इसलिए उनके आदेश को स्वीकार करते हैं। और जो यशोदा माई है उसका बहुत वर्णन आता है वृंदावन चंपू में, कैसे एक बार कीर्तिदा जो है वह कीर्तिदा और शुभानु महाराज वो नंद महाराज और यशोदा को अपने घर में भोजन करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रण देते हैं। जब आमंत्रण देते हैं तो यशोदा माई अपने घर की जो मेड सर्वेंट नौकरानियां हैं उनको भेजती है संदेश लेके कि हम आपको आमंत्रण कर रहे हैं। और फिर वो यशोदा माई का जो गुणगान करते हैं वो बहुत ही मधुर गुणगान है, वृंदावन चंपू में बहुत विस्तारित गुणगान है यशोदा माई का, तो हम संक्षिप्त में बोलेंगे यहाँ पे। वो कहते हैं कि हे यशोदा, कि आप अगर हमारे घर में प्रवेश करती तो आप न केवल हृदयेश्वरी है, न केवल आप स्वयं महान गुण संपन्न है, पर आपके महान गुण संपन्न होने का जो सबूत है कि वह यह है कि आपको कृष्ण जैसा पुत्र मिला है, तो इसलिए आप कृपया हमारे घर में आकर हमारा भोजन स्वीकार कीजिए। तीन चीजें बोल रही कि आप बहुत गुणवान हैं, आप आए तो हमें पवित्र कर देंगे, और आप पे गुणवत्ता का जो सबूत है वह है कि आपको कृष्ण से पुत्र मिला है। तो भले ही नंद महाराज सबको आनंद देते अपने गुणों से, यशोदा माई जो है जो स्त्री होती है उसको घर में ग्रह लक्ष्मी बोलते हैं, यशोदा माई सबको यश प्रदान करती है, पर जब उनको पुत्र हुआ कृष्ण के रूप में तो कवि कर्णपुर बताते हैं कि वास्तव में कृष्ण जो थे उन्होंने यशोदा को यश दिया और उन्होंने आनंद को नंद को आनंद दिया। यह कृष्ण की महिमा है। और ऐसे जो भगवान कृष्ण है वे वास्तव में अनेक रसों का आस्वादन अपने भक्तों को कराते हैं, और इस रस के आस्वादन में जैसे भागवतम के, तो भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में रस का वर्णन आता है, और बारहवें अध्याय के बारहवें स्कंद के आखिरी अध्याय तेरहवा अध्याय उसमें वर्णन आता है कि भागवतम का अगर रस किसी ने चख लिया, यद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रचि क्वचित्, कि इस रस को अगर किसी ने आस्वादन कर लिया नान्यत्र स्यात् रचि, और कहीं भी किसी की रति आकर्षित नहीं होगी। तो यह जो रस है वह हम कैसे अनुभव कर सकते हैं हमारी स्थिति पे, हम भगवान की लीला वगैरह श्रवण कर सकते हैं, पर जो रस भगवान और भक्त के बीच में अनुभव होता है वह इस भौतिक जगत में गुरु और शिष्य के बीच में अनुभव होता है। तो जो शिष्य अगर गुरु के को स्नेह पूर्वक आदर पूर्वक सेवा करता है गुरु अपने गुरुदेव की, तो वही जो आध्यात्मिक रस भगवान भक्त को प्रदान करते हैं वह गुरु अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। और प्रभुपाद जी की यही महिमा थी। प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में गए तो वो 40 रुपए लेके गए, 40 रुपए भी ऐसे थे कि नॉन कन्वर्टेबल थे, परिवर्तन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी अगर हमारे अमेरिका में जाएंगे तो बहुत से भारतीय है, बहुत से भारतीय है, और अगर हम वहां पे अभी रुपए कुछ महिमा महत्व है, 40 रुपए ज्यादा कुछ है नहीं, $1 होगा, पर फिर भी रुपए उनको पता है। जब प्रभुपाद जी वहां पे गए तो लगभग भारतीय बहुत कम थे तभी, तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि वो भारत में आए, उन्हें पहला भारतीय कौन मिला उनको, पहले भारतीय उन्होंने कौन किसको देखा, जब वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में आए वहां पर जो गार्ड था वो पहला भारतीय था। अमेरिका में जिंदगी भर उन्होंने एक भी भारतीय व्यक्ति को देखा ही नहीं कभी, तो भारतीय लोग वहां पे बहुत कम थे। तो प्रभुपाद जी वहां पे 40 रुपए लेके 40 रुपए कुछ काम ही नहीं थे, पहले तो 40 रुपए का मूल्य बहुत कम है, और मूल्य होगा तो भी वो रुपीज से कन्वर्ट करके डॉलर में देने वाला कोई है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी गए अकेले, पर वो फिर क्या था उनके पास, उनके हृदय में भक्ति रस था। प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के नहीं गए, वृंदावन अपने हृदय में साथ में लेके गए, जो ब्रज रस था वो साथ में लेके गए। और उन्होंने अपने प्रवचन के द्वारा, अपने कीर्तन के द्वारा, अपने उदाहरणों के द्वारा, और विशेष करके उन्होंने अपने उपदेश दिए उसके द्वारा वह भक्ति रस को प्रदान किया। और वह भक्ति रस इतना स्वादिष्ट था कि जो भौतिकवादी लोग जिनको कृष्ण कभी एक साल पहले कृष्ण का नाम सुना नहीं है, वह लोग अपना सारा, अपने देश को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को छोड़कर किसी दुष्प्रदेश में चले गए उसी कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो गुरुदास रूपा जी के शिष्य उठा रहे थे कि जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई, जब बांसुरी बजाई तो गोपियां जो भी कर रहे थे सब कुछ छोड़ दिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्ण को पसंद करने के लिए दौड़ते हुए चले गए। तो वैसे ही बोले कि प्रभुपाद जी जब कोई आदेश देते थे तो हम जो भी कर रहे होते सब कुछ छोड़ देते थे, और प्रभुपाद जी का आदेश पालन करने के लिए प्रभुपाद जी बोले आप इजिप्ट में चले जाओ, आप अफ्रीका चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ। प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद प्रभु को और बताया कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रचार करो। तो पाकिस्तान में वैष्णव तिलक पहनना, वैष्णव पोशाक पहन के प्रचार करना बड़ा खतरनाक है, पर उन्होंने आदेश दिया और तुरंत उन्होंने चालू कर दिया। प्रभुपाद जी भारत में गए, उन्होंने अपने पाश्चात्य से बोला कि आप सब भारत में आ जाओ, तो अभी उनके पास पैसा नहीं था, भारत में आए कैसे। तो प्रभुपाद जी बोला तो आ जाओ, तो उन्होंने ढूंढ के निकाला सबसे सस्ता एयर फ्लाइट कहां से है। तो एक एयर फ्लाइट था तो वो इजिप्ट में उतरने वाला था, ये 1970-71 की बात है, इजिप्ट में उतरने वाला, इजिप्ट में ट्रांजिशन था, इजिप्ट में दूसरा फ्लाइट पकड़ना था। तो वो बोले वो फ्लाइट इतना घटिया था, ऐसे लग रहा था जैसे कभी कभी गाड़ी होती है वो हिलती है, ट्रेम्बल होती है, तो उससे से फ्लाइट हिलते हिलते उड़ रहा था, बोला अभी कभी क्रैश हो जाएगा। तो हम प्रभुपाद जी पीछे इसलिए फ्लाइट पे आ गए। तो इजिप्ट में उतर गए, तो तभी इजिप्ट में उतरे तो क्या हुआ, तो भक्त अभी क्या हो गए, उतर गए क्या करेंगे, तो समय था तो एयरपोर्ट में कीर्तन करने लग गए। तो उस समय जो इजिप्ट में जो इजिप्ट के जो अध्यक्ष थे प्रेसिडेंट नाजिर, उनके उनकी हत्या हो गई थी, तो उसके इजिप्ट में पूरा इमरजेंसी था। तो ये भक्त अजीब रूप से नाचने लग गए, गाने लग गए, तो वापस उनके जो पुलिस में थे वो आगे अपने बंदूक लेके भक्तों को दिखाने लग गए, क्या कर रहे लोग, ये कुछ नाच रहे, कुछ बॉम्ब वगैरह इनके हाथों में। तो फिर सब लोग डर गए, तो गुरुदास उनके पास गए, उनको थोड़ा इजिप्ट से आता था, उन्होंने बताया कि हम हमारी प्रथा के अनुसार जो प्रेसिडेंट नाजिर का गुणगान कर रहे हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट नाजिर का गुणगान कर रहे हैं, तो हम आपको एस्कॉर्ट करते। तो पूरे एयरपोर्ट में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया, और ये प्रेसिडेंट थे जो 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 सिक्योरिटी थे वो उनको मार्ग, उनको सहयोग दे रही थी पूरा। तो वो बता रहे थे कि जो प्रेसिडेंट नाजिर है कोई भी हो, उनका जो भी गुण है वह गुण भगवान से आ रहा है, तो भगवान का गुणगान हो रहा है तो सबका उसमें गुणगान हो ही रहा है अपने आप। तो इस तरह से बड़ी बुद्धि से, निपुणता से, फिर वो जहां भी मौका मिला प्रचार करते हुए भक्त भौतिक भक्तों ने सारे कृष्ण भावना का प्रचार सारे विश्व में किया। जो रस है हमें भी अनुभव हो सकता है, हमारे जो गुरुदेव उन्होंने जो आदेश दिया है उसका अगर हम श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, रोज साधना करना हमारा रोज का, और साथ साथ सेवा में मन लगा के, हृदय लगा के हम सेवा जब करते हैं तो हम भी रस आस्वादन कर सकते हैं। जब रस आस्वादन होगा तो फिर भौतिक जगत के रस है वह सब जो है बिल्कुल नीरस बन जाएंगे, और जब नीरस बन जाएंगे तो फिर हम भक्ति में बड़ी बहुत ही तेजी से प्रगति करके भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, और वहां पर जो परम रस है भक्ति का उसका आस्वादन कर सकते हैं। सारांश में हमने आज चर्चा की कैसे कि जो गौड़ीय संप्रदाय का विशेष योगदान क्या है, कि जो वेदांत और रस इसका संगम कराए। तो भागवतम का पहले अध्याय के पहले स्कंध के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में चर्चा की कि जो वैदिक शास्त्र का फल है वह है रस, और रस की जो भौतिक जगत में नाटक में होने वाले अनुभव है वो भरत मुनि ने बताया है नाट्य शास्त्र में, पर रूप गोस्वामी बताया कि भगवान की स्मरण और सेवा से जो सदैव जो अनुभव होता है उसको रस कहते हैं प्रेम का। और फिर यह रस का जो स्रोत है वह श्रीमती राधा रानी है। तो हमारा स्मरण ज्ञान और प्रीति, इसके द्वारा जब राधा रानी प्रसन्न होती है तो फिर हम रस का उत्पादन कर सकते हैं। और फिर हमने अंत में देखा कैसे नंद महाराज यशोदा माई की महिमा, और हम रस का आस्वादन हमारे स्तर पर कैसे कर सकते हैं, हमारे गुरुदेव की ध्यान प्रमाणिकता से सेवा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, शूल प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।